para crescer. Afirmar pouco. Para cair da alma, não tem esforço na TV. E é o bacana essa massa também. Sete janeiro embarcou, pelo aqui de janeiro embarcou. Seu lugar pode ser traído ao ver a caminho. Seja a ver que ele não é tudo que você tem que ver, vai por um barulho também. Embarcou no caminho. Cada arco que está a ser é essa. Se você quer, quer isso. Se você me quer, se você me quer. Eu preciso. E a minha vaca. Tomate, tomate, que está em uma estratégia da minha vaca. Vá lá. Eu faço de novo a ser um padrinho. Deu que te dá o seu gênero. Deu que te dá. E aí, meu pai? E a Bada é. E a Pratita Mata é. Quem tu bate, tu olha. Jesus cresceu, né? E Jesus já deu de onde? E quando ele quer de que tu era? E se eu bato, me acho que assim. E a Dharma da Sankhata, fala de onde? संसार के प्राणियों का दुख का हरण करते हैं जो सुंदर अपने मृदु हास्य से सुशोभित मुख के द्वारा ब्रजवासियों गोपियों और सुर बनताओं के काम का सनातन चर्चा में
Maharaj Parikshit, in this last verse of the Rasayana, is while narrating this to his mother, is now concluding this upakhyan. In the ordinary meaning of this word that Gurudev spoke is that may there be all glories to Krishna.
The ordinary meaning of
general meaning of this
slope.
General meaning
of this slope.
Of this slope. All glories to Krishna, all glories to Krishna, all glories to Krishna. That Krishna, who is the shelter of all living entities and who resides within the heart of each and every living entity, who even though he is the shelter of all the jivas, he took birth from the womb of Mother Devaki. This is normally the famous fact, but actually the real fact is something else. He is the foremost among the Yadus, and through the Yadus, through the Yadavas, and with the help of the Pandavas, he kills many demons, and he also eradicates the misery of the living entities. By his smiling, sweet face, he gives pleasure to all the living entities. This is the general meaning of this word. Nothing was
coming. We are not lying. परीक्षित महाराज जी ने भागवत खोलने के बाद और सांस काटने के पहले बीच में अपने रसायन में साधारण इसमें अभिषेक कुछ ब्रज के भूमि की ब्रज के पशुओं की ब्रज के पक्षियों की ब्रजवासी मात्र की और उसके बाद में जमुना जी की मानसी गंगा गिरिराज गोबर्धन Yasoda Maya Ananda Baba Sridham Sugal Sakha. Or this is the Japanese Prayasi Gopinoka. Mahatma Baba, this is the गोपियां के वर्णन कर लिए. कभी कभी मथुरावासी यादव पत्नियां गोपियों की महिमा का वर्णन, कहीं कहीं द्वारका की महिषियों ने गोपियों की महिमा का वर्णन. और विशेष करके उद्धव ने उनकी महिमा का वर्णन किया. इस तरह से हम देखते आसाम हो चरण गृह और वर्णन किया जावई क्रिया पदा आजाद जी हस्त काम योगेश्वर सति सदात्म निराश गोष्ठ कृष्ण भगवता पत्नी कृष्ण भगवता
चरणार
चरणारविंदम नक्तम तने की विधो
काम दापन.
ऐसे ऐसे लोगों ने विशेष रूप से उनकी वंदना की. जो बड़े बड़े गुणी लोग जो भी लोग जिन शिष्य के चरणों का ध्यान ध्यान में भी नहीं पाते, यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी कृष्ण के वृंदावन में कृष्ण के चरणों का स्पर्श का या ध्यान में भी दर्शन का सौभाग्य मिले. और गोपियां क्या करते हैं, उस साक्षात कृष्ण के चरण कमलों को साक्षात रूप में सेवा अपने अंगों पर धारण करके इस तरह से उनके रक्षक के आभूषण बना लेती है उनके चरणों को. यहां तक कि कृष्ण की इच्छा रहती है कि किस प्रकार से मैं गोपियों की सेवा करूं और साक्षात रूप में उनके चरणों की, इस प्रकार से चरणों के द्वारा कृष्ण गोपियों की सेवा करते हैं. ये गोपियों की पराकाष्ठा ये सब बतला है. बतलाने के बाद में वहां से तीन से गुण मतलब जब तेरे गुणमती करूं हम इत्यादि बतलाया है या यमुना जी का कैसा सुंदर वर्णन किया आकाश के लिए पूर्णा पुलिस उदाय पदार्थ किरा रहे. ये सब यहाँ के लोगों की संवेदना एक एक यदि भाषा के जन्म हो तो फिर भी हो तो वृंदावन इस प्रकार से इसी महिमा का वर्णन करते. और अब जो पंचांश करने जा रहे हैं वृत्ति महिमा और गोपियों की महिमा को समाप्त करने के लिए मंगलाचरण के रूप में श्री भागवत भगवत महात्मा गान के द्वारा अपने गुरु सुखदेव जी के तरफ पठन भार कर जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत के द्वादश स्कंध के अंत में उन्होंने सारी लीलाओं का मंथन कर एक श्लोक में सागर की सागर की भांति सागर में सागर की भांति सारे श्रीमद भागवत की लीलाओं को एक ही बोतल में बंद कर रहा एक श्लोक. तो इस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने अपने अंतिम श्लोक में सारे श्रीमद भागवत को उसका सार एसन एक श्लोक में भर करके उसका मंगलाचरण करके समापन किया. उस प्रकार से वंचित महाराज जी की मैया को जो पुनर्ध्यान कर रहे उन सारे रसायन को एक साथ में लेकर के एक श्लोक में सागर की तरह भर करके इसकी मंगला और आश्रम में इतना इम्पोर्टेंट श्लोक यह है
श्री सनातन गोस्वामी इज एक्सप्लेनिंग
इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन क्वेश्चन.
श्री सनातन गोस्वामी इज एक्सप्लेनिंग दैट परीक्षित महाराज आफ्टर हियरिंग श्रीमद् भागवतम And before he was bit by the snake, he is narrating this rasayan to his mother. And in this rasayan, in a general and in a special form, he is glorifying the Brahmabhumi, and all the living entities like different animals, birds, Jamuna, Marathi Ganga, Yashoda, Sita, Subhas, and especially his dear gopis, is glorifying them very specially here. Sometimes at different times, the wives of Yadav have also glorified the gopis. Similarly, the queens of Dwarka have also sung the glories of the gopis. And Uddhava also has very beautifully glorified the gopis. Asa Maho Charan Renu. And like this, there are so many different verses in Srimad Bhagavatam that the gopis have been glorified. That Krishna, whose lotus feet the yogis cannot meditate upon even in their meditation, and those lotus feet which are very difficult for even Lakshmi to attain, those are worshipped so nicely by the gopis. They are the ornaments of their chest. They keep them on their vakshas or on their chest as massage or lotus feet. This is the highest glory of the gopis. Even the different blades, the blades of grass, the different trees and latas of Vrindavan are worth glorification. The Jamuna and each and every thing of Vrindavan has been glorified. That if they die, that then in the next life we should become an ordinary blade of grass in Vrindavan. Now he is concluding all these glorifications that he has done all through this rasayan in the form of Mangalacharan, just like his spiritual master, Sri Sukadev Goswami, who at the end of 12th canto, in the last verses, in one verse alone, he explained the essence of all the pastimes of Krishna that he had described before. Similarly, following in the footsteps of his guru, Sri Parikshit Maharaj, his guru was Sukadev Goswami. Now Parikshit Maharaj is concluding all the science now in this last verse. So this verse is very, very important.
अंत में भगवान सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का बताया गया पर मोक्ष को जानने वाले और जीवों को भी खबर प्राप्ति देने वाले इस देशांतर को कभी सुखदेव गोस्वामी को नारद जी को भी बताया गया है भगवान ने यह भगवान है ये सब भगवान तो जिस प्रकार से भगवान सुखदेव गोस्वामी भगवान सुखदेव गोस्वामी एक कंडुष में एक चुल्लू में लवण समुद्र को पार करने के लिए कुछ अगर तरीके ने जैसे एक चुल्लू में सारे समुद्र पार कर लिया अगर से जैसे प्रस्तुत हो रहे हैं उसी प्रकार से ये सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण चैतन्य महासागर को पान करने करने के चैतन्य चैतन्य अभाव समुद्र है उसको पान करने के लिए अर्थात विचित्र सब कोटि ग्रंथों में जो कृष्ण का लीला चरित्र वर्णन किया गया है यहाँ स्वामी जी कुल लीला अवकाशम चित्र सार एक प्रस्तुत करके प्रस्तुत विषय में इस विषय में जो चल रहे हैं गोपियों की महिमा वृद्ध की महिमा उस विषय में उपसंहार करने के लिए इस श्लोक का गान कर रहे हैं जय जन रिवार गौरी जन गौर
श्लोक At the end of the 10th canto, Shukadev Goswami has been addressed as Bhagwan Shukadev Goswami because he is the knower of all the tantras and he enlightens all the living entities. Just like that, sometimes Lord Shiva is also called Bhagwan Shiv. They are not Vijay Bhagwan, but Bhakt Bhagwan. Just like Agastya Rishi, in one trip he drank the whole ocean. Similarly, Shukadev Goswami, this endless, unlimited ocean of Krishna Chaitanya, he is
not Chaitanya. Krishna, pastimes of Krishna.
This endless ocean of the pastimes of Krishna, he is trying to relish all of that in one sip by describing the essence of that in this verse. And therefore, in this last, at the end, while concluding the glory of Gopi, he recites this one, this verse.
Aise jo Krishna hai, koi jai Krishna. Aur tara, last mein, Pankit Maharaj ji apni maiya so pa rahe hain. Iske baad mein wo apna samjhana. यहाँ पर पूर्व श्लोक एक श्लोक कहता है जय विजय मातु श्लोक है उससे पहले श्लोक में कृष्णस्य ये एक पद है कृष्ण के लीला चरित्र वो भी भक्ति यहाँ पर ला करके कृष्णस्य अंत में कृष्ण को लाना होगा इसलिए यहाँ पर कृष्ण का नाम नहीं है इस श्लोक में जन्म जन्म निवास हो जन्मवास बनाया गया शिव की जन्मवार हो जन्मवार परिषद जन्मों जन्म लोग इनके परिचय है स्वर्ग जन्म की रक्षा निर्धारण जिन्होंने अपने बाहुबल से पांडवों और जादवों के बल से समस्त पृथ्वी का भार धारण किया नाम है जी के कौन शिक्षा विधि लग्न जिसके भी जड़ जन्म था और जन्म है उनके सारे दुखों को नाश करने वाले अपने मुख उड़ाते हुए मुख से मंदिर मुख से ब्रज की और तू की ब्रजी मैंने ब्रज की और तू मैंने द्वारा पूछी मथुरा पूछी बनितांगों के काम को वर्णन करने वाले किंतु कौन नाम इसमें नहीं बताते हैं इसके प्रकरण के बल पर इसका अर्थ लगाओ कृष्ण वो कृष्ण जो जिनके के नीचे कर रहे हैं ऐसे जो कृष्ण है ये जय
इन द वर्ड सो परीक्षित महाराज नाउ सेज ऑल ग्लोरी टू कृष्ण एंड ही असुर्स दिस इट इज प्रीवियस वर्ड ही हैज सेड कृष्ण सेल्फ दिस इज अ फिफ्थ केस in Sanskrit grammar, which means of Krishna's pastime. In the last word, the name of Krishna has not been directly mentioned, but it is mentioned indirectly, like Janadivas, like he is whose associates are different Yadus. With the help of Yadus, he and the Pandavas, he removed the burden on earth. One who takes away, who removes the misery of everyone, the inert as well as the living entity, but who by his very sweet smile increases the charm of the blessed gopi. So indirectly in this word, Krishna has been mentioned. We have to understand that this is all mentioned for Krishna.
पहले से आरंभ करते जय की जन निवास जन निवास का क्या तात्पर्य है जन शब्द मनी जीव पृथ्वी में जितने भी चराचर जीव हैं उन लोगों के लिए ये किया जाता है और निवास का होता है आश्रय जिसमें निवास करते हैं जो कृष्ण या जिस कृष्ण में अखिल प्राणी ईश्वर ब्रह्मांड के निवास करते हैं या आश्रय ग्रहण करते हैं या जगत के जीवों के जो आधार हैं उसके जन को मन जाते हैं, निवास से ये कृष्ण कहते हैं अखिल प्राणियों के आश्रय हैं, आधार हैं, पालन पोषण करने वाले प्राण एक अर्थ ये आधार नहीं है। इसलिए समझो कि हमारे रक्षा करने वाले हमारे आश्रय को कृष्ण हैं, जो ऐसे कृष्ण का भजन नहीं करते वो क्या है निराश है वो माया में से कहना अतः जो जीवों के अंतर्यामी हैं आश्रय होने के अंतर्यामी होंगे तो जीवों के अंतर्यामी रूप से उनके हृदय में निवास करते हैं इसलिए जो निवास दूसरा आपकी है अथवा जीव जितने भी हैं प्राणी हैं जिनमें निवास करते हैं हम लोग कहाँ निवास कर रहे कहाँ पर रहे हम भगवान कारणाधिकारी विष्णु से एक लोम रूप में अनंत कोटि विष्णु ब्रह्मांड है आपके कारणाधिकारी कहाँ है ऐसे ऐसे कारणाधिकारी विष्णु जो है कृष्ण के एक लोम रूप में किसके बलदेव जी के एक लोम रूप में रहते हैं बड़े प्रभु जी के भी आश्रय ये कृष्ण है इसलिए हम सभी कृष्ण के अंदर हैं कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है जो कुछ है कहाँ है इसलिए हम लोग भी कृष्ण के अंदर में हैं और जन शब्द से एक और हमारे अलग अलग अस्पताल हैं सनातन गोस्वामी है और एक एक से बढ़ करके और ऊपर चलता जाएगा इसका भाव जन्म में होता है निज जन स्वजन बंधु बांधव तो कृष्ण कहते हैं हमारे स्वजन मैं मथुरा वासियों से तुलसी का पद व्यवस्था करके अपने स्वजनों के यहाँ से लौट आऊंगा या मैं स्वजनों को की व्यवस्था करके अपने माता पिता के पास में लौट आऊंगा ये स्वजन से कहा गया अपना तो कृष्ण जैसा बंधु विष्णु ब्रह्मांड जो है हमारा पूर्णिंग है जो मूर्ख है तो उन पर विश्वास है बिना किसी हेतु के सब पर दया करने वाले कृष्ण हैं बिना किसी हेतु के नहीं तो कोई जीवित नहीं रहता तो इसलिए सबके सबके बंधु बांधव कौन है एक किसी कृष्ण में है कोई बंधु और समय
और बंधु
समय में माता पिता और
माता पिता
बंधु कृष्ण में है
और माता पिता बंधु
साधु के शरणागत में है अगर कृष्ण से बड़ा करके हमारा स्वजन बांधु कोई नहीं है ऐसा समझो हमारे प्रिय से प्रियतम है प्राण बल्लभ तक है इसको इस सुख में समझ लो स्वजन का अर्थ होता है साधारण रूप में भक्त भक्तियों उनके निजन है इसलिए भक्तों के जो आश्रय निवास हैं भक्तों का पालन पोषण करने वाले ऐसे तीन भक्तों में पांच प्रकार के भक्त हैं कौन कौन
ज्ञानी भक्त
ज्ञानी भक्त
शुद्ध
भक्त
प्रेमी भक्त
प्रेमी भक्त प्रेमर भक्त और प्रेमास्त यहाँ तक आएगा प्रेमा इन सबके बंधु और इससे ऊपर उठ जाओ प्रज के और गजवानों में भी सबसे बढ़कर के गोपियां और उन सब में भी चंद्रावली और राधिका और उनमें भी सब रूप गुण में परियसी अपना बंधु यदि है उनके बंधु फकीर स्वामी सिंधु में भी बताया गया पहले श्लोक में
राधा प्रिया
इसलिए यहाँ पर उनके मुझे जन है। ऐसे जो कृष्ण हैं जय जो अत इन्हीं के भक्त जितने उनके भक्त हैं उनके अंतर में साक्षात स्फूर्ति प्राप्त होकर के जो उनका स्मरण करते हैं गोपाल मंत्र इत्यादि है महामंत्र करते हैं स्वयं यदि निरापराध हो उनके हृदय में चल जाए निश्चित रूप से। बाहर में नाना प्रकार के अवतार के रूप में प्रकट होकर के निरंतर भक्तों के पास रहते हैं ये सब द्वारा पर ब्रह्मत्व परमात्व सर्वेश्वरत्व सर्व अवतारी बीजत्व। इसलिए ये जो कृष्ण है ये क्या हुए साधारण में पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर और सब अवतारों की गिरती। जैसे गोपियों के जो प्रिय हैं कृष्ण ये कौन हो सकते हैं ये पर ब्रह्म होंगे कि कौन न परमात्मा होंगे न सर्वेश्वर होंगे ये कृष्ण द्वारकाधीश वाले हो सकते हैं ये सब कुछ किंतु गोपियों के प्राण बल्लभ ये नहीं हो सकते हैं नंद के पुत्र नहीं हो सकते। इसलिए समस्त अवतारों का भी जस्व जो ऐसे जो कृष्ण हैं वो जन निवास है इसका इतना सुबह जन निवास है। जो जो जिस स्तर में है उसको अर्थ हो लेगा एक ही अर्थ सब लोग नहीं ले सकते तो जिस जिस स्टैंडर्ड में है जिनकी कारणानदी खुशी होती है जिसका गुरु तत्व उसका नाम क्या है अधिकार अनर्थ दूर हो चुके हैं निष्ठा रुचि आसक्ति भाव इसके अनुसार में किया।
Dr. Sanatana Goswami is explaining the purpose of the first word, Jana Nivas. And he explains different meanings of this word, and one of each one is progressively more deeper and advanced than the previous meaning. The first one he says, Jana means all living entities, moving or non-moving. One who is the Nivas, Ashrami, shelter, of all those living entities, that is Jani Nivas. Krishna is Nivas, that means he is the basis or the foundation of all the living entities. What type of, how is this Krishna? He is the shelter of all the living entities. He is the Pran Swarup, that means he is their very life. One who performs bhajan of such Krishna, he will those who do not perform bhajan of Krishna, they are without shelter and they fall into maya. The second meaning of Jandivas is that one who resides in the heart of all the living entities. He is Jandivas. The third meaning is that in whom all the living entities are residing. All of us, this entire universe, is within one single pole of Karna of the tribe Mahavishnu. And that Mahavishnu is within one pole of Krishna. So everything that exists in this world, whether material or spiritual, is within Krishna and therefore he is Jan Nivas. Like this, Sanatana Goswami is explaining different meanings. Then he explains further what is the meaning of Jan. The fourth meaning of this word Jan Nivas is that his own people, Jan means first people or his own people, person, his own associates, his own associates nearer and nearer one. He, Krishna, is very merciful without any reason, without any hetu, he is merciful to everyone. Otherwise, no one would be alive in this world. No one other than Krishna is more nearer and dearer. No one, more than Krishna, no one is our Bandhu, our well-wisher. He is our plant brother. That means he is the dearest to everyone's life. He is dearer than life and soul. Swargan means bhakt, the devotee, that means nearer and dearer one. So one who is the shelter of all the devotees, that is Jan Nivas. There are five kinds of bhaktas or devotees: Jnani bhakt, Shuddh bhakt, Premi bhakt, Premsvar bhakt, and Premadur bhakt. And then the devotees in Vrindavan are even greater than these devotees. And among all the devotees in Vrindavan, the gopis are the highest. And among them, Chandravali and Sri Radha. And among them also, Srimati Radhika is the highest of all. In Bhakti Rasamrita Sindhu also, the word is there with glorified Radha Priya. That one who is the dearest of Srimati Radhika, such Krishna, may all glory to be him, be to him. One who worships Krishna through chanting of Gopal Mantra and his holy name in an offenseless way, Krishna will certainly manifest within his heart. And outside, in the external form, he manifests in so many different avatars or incarnations. So in a general way, he can be understood as Paramatma, Parameshwar, or Sarveshwar, or the seed, the very foundation of all the different incarnations. But that form of Krishna is not dearer to gopis. The Dwarkadhish Krishna can be Paramatma and Parameshwar, but not the one who is the dearest, who is the dearmost of the gopis. So these are the different meanings explained of Jana Nivas. And then Maharaj was also explaining that everyone, according to their own level of advancement, will understand the different meaning of Jana Nivas. And to the degree that one's unwanted desires, anarthas, have been removed, to that level he will understand this different meaning.
Swami Bhaklaya, he was Parabrahma, Param Paramatma, Parameshwar. अखंड अवघटन प्रतिशील शक्ति वाले और विशाल ऐश्वर्य अपनी चांद तक और छात्र जीने हैं। बड़े विचित्र की बात ऐसे जो सबसे अंतर्ज्ञानी है सबसे आश्रय है। ये कितनी विचित्र बात है कि देवकी के पुत्र के रूप में वो ख्यात है, देवकी के घर से ये उनकी कन्या है। विशेषतः ऐसे जन्म लेने के कारण देवकी के घर जिसके अणु परमाणु में जिनके अंश कलाओं के अणु परमाणु में लोम कूप में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड और उसका मूल जो कृष्ण किसी के गर्भ में समा करके इतने छोटे होकर के आ जाए, कैसे बनेगी। और दूसरी बात, उनसे कोई छोटा ही नहीं है, उनसे भी अज्ञान उसको धारण करना कैसे करती है। तो उनसे भी अणु है, हवा से भी छोटा है, हवा के लाख भाग से एक भाग से भी छोटा है, उसको पर पकड़ के कैसे रखता है और वो पेट भी कैसे आ जाए। किंतु ऐसे प्रभु वो जन्म ग्रहण करते हैं देवी की किसी प्रकार। ये इस लीला के द्वारा क्या बताया गया, देवकी जन्म बाद देवकी के जो जन्म प्रसिद्ध तो है किंतु ये बाद मात्र है। असल में ये सब लीलाएं उसमें आएंगी, यहाँ पर जन्म लिया, चतुर्भुज रूप में जन्म लिए, मैया पिता माता दोनों डर गए। कृष्ण अपने पूर्व जन्म की कहानी पूरी सुनाई, वो लीला तो था जनैतिक रूप में कश्यप अदिति
विष्णु सुतपा
इनके तपस्या से प्रसन्न होकर के किस प्रकार से उनके कर्म में आया, या ये सब वसुदेव जी के अंश करा रहे हैं, उनके द्वारा तपस्या करा करके उनको ऐसा सुयोग दे करके वसुदेव देवकी में वो लोग मिल सके मिल गए और उनको ये सुयोग दिया भास्कर लड़क का साथ। किंतु भास्कर लड़क वहां पर अर्पादन नहीं हुआ, कहा हुआ कृष्ण के आदेश से वो बच्चे बन करके कृष्ण और वसुदेव जी की सूप में जमुना जी को कैसे पार किया, गोकुल में कैसे पहुंचे, वहां पर एक लड़का हुआ है यशोदा जी के घर और उसने आकर्षण करके इस चतुर्भु कृष्ण को अपने अंदर में मिला लिया और उस बच्चे को लेकर के फिर वो जमुना में आए तो वो कृष्ण ब्रज वाले ब्रज में आ गए और वही पार्थदेव कृष्ण वहां पर फिर आए और लड़की ले आए और ये रहस्य किसी को पता नहीं हुआ। इसलिए सारी दशम स्कंद की वो जो लीलाएं हैं इस संबंधी पांच या छह तक सारी लीलाएं इसके अंदर में समाहित है। देवकी जन्म बात के बाद विशेषता गोकुल में आए और उसमें किस प्रकार से पहले सूचना को मारा और मार करके उसके क्या दिया आत्मचित गति दी और उसके नाते इतने बड़े दयालु है कुछ दयालु उसके भाइयों को अभाषु और बभाषु को कोई साधन नहीं करने पर भी उनको ऐसे ये दिया। यहाँ तक कि जनराजु को प्रेमा भक्ति प्रदान करके जनराजु वो भी विरोधी था तो उनको भी सदगति दे दी। इसके बाद में किस प्रकार से दामोदर लीला हुई ये सब लीलाओं का उसी में है दामोदर में वो कुंजनी फल दिखाई के ऊपर में कैसी दया थी ये सारी उसमें आ जाएगा। वह जन्म कारण प्रसंग बर प्रधान कारुण्य सूचक अपूर्व वृत्तांत कथन गोकुल आने गोकुल में ले आए और उसके द्वारा इस प्रकार के ब्रज को अपनी लीलाओं के समुद्र में स्थित स्वामी लीला सभी एक ही ऐसे सुंदर बाल लीलाओं का कहीं भी नहीं उन्होंने कर वो सब लीलाओं का वर्णन सूर्य गोस्वामी जी उसी के अंतर भाग्य में कर
then the next word in the word is being explained that Paramatma who is Parameshwar and who has other than Ghatan Pragyati Shakti means by whose potency things that are impossible are also made possible, who resides within everyone's heart, he came in the form of Devaki's son from her womb. What a great wonderful thing is this. This is actually his mercy. So many unlimited universes are there within the powers of Mahavishnu who reside within Krishna. And that Krishna within whom this entire universe, entire material and spiritual manifestation resides, he appears from the womb of Mother Devaki. This is such a wonderful thing. Also Krishna is smaller than the smallest, is lighter than the air, and it is so difficult to catch such a small thing, but still he appears from the womb of Mother Devaki. It is normally the famous thing is that he appears from the womb of Mother Devaki, but actually the truth is something else. He appeared in his four-handed form in front of them and he explained to them about their previous life as Kashyap Aditi, Krishna and Krishna Garbha and how and Krishna and Sudapa and how they appeared in the bodies of Vasudev and Devaki and thus perfected their bhajan and got an opportunity to relish Vatsalya's bhav. But actually, this entire leela of Vatsalya Prem was manifested in Gokul. When Krishna appeared, at that time Vasudev, he crossed the Jamuna river and he came to Gokul. And there was also, Krishna was actually manifested, he appeared in Gokul. And this four-handed form of Krishna merged in that Krishna who appeared in Gokul. And Vasudev brought back the daughter, the girl, and all these different pastimes are explained in this word, Devaki. Devaki Dharmabad. In Gokul, he manifested so many different pastimes. He first of all killed Putana and he gave her liberation, which is fit for motherly destination. And he is so merciful that he even gave mukti liberation to her brothers, Arhasur and Bakasur. Then he manifested the Dabodhar Leela and then he gave mercy to the fruit seller, to the lady who came to sell the fruit. Like this, so many different pastimes he manifested in Gokul. All of these are, when it is described, Devaki Janmavar, all of these come, all these pastimes come in that. He manifested so many beautiful pastimes and he emerged entire Gokul in those pastimes, as it is glorified in Damodar Ashtakam.
इस तरह से एक एक शब्दों में बहुत सी लीलाओं का वर्णन है और भी कैसे नंद बाबा अपने जो चरित्र बतला रहे हैं कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया अपने पूर्व जन्म में बतला रहे हैं जो धरा जो साथ में वो यशोदा मैया नहीं है किंतु उनका कुछ अंश है जो लोग कोई अन्य जीव ऐसा ही भजन करके यशोदा मैया के अनुवृत्त में नंद बाबा के अनुवृत्त में भजन करना चाहते थे वे लोगों को ये अवकाश से उनको बात देकर के और नंद और यशोदा ने उनको मिला करके उनका रक्षा पालन करा करके फिर वो लोग गए वृंदावन में उनको गोप और गोपी माता और पिता के रूप में मापू गया कितनी विचित्र सब लीलाएं भागवत आ जाएगा जो भागवत में नहीं पढ़ रही थी इसे आज हम यही समाप्त करते हैं कल इसके बाद की साधारण लोगों के समझ में नहीं आएगा
मैंने कहती हूँ
ठीक है तो आप लोग कल इसके बाद निकलेंगे आज सिर्फ संस्कृति परिचयों के लिए नहीं है आज कुछ दूसरे लोगों के लिए वैष्णव नहीं है कई लोग हैं
स्मार्ट
और स्मार्ट ब्राह्मण हैं उन लोगों के लिए आज है और कल वैष्णव के लिए तीन चतुर्थी आज जो लोग शंकर जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं और नमाबाजी हैं उनके लिए आज है और जो शुद्ध वैष्णव हैं भगवान का परम भक्त ज्ञान करके उनका प्रिय ज्ञान करके उनकी पिता के लिए प्रार्थना करते हैं वो करते हैं हम लोग कल उनकी उपासना इसे कोई संदेह नहीं आ रहा जो व्रत नहीं करना चाहते हैं जरूरी नहीं है और जो व्रत नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे किंतु हम लोग कुछ मैं अपना बतलाता मैं सनातन गोस्वामी का फॉलोअर हूँ सनातन गोस्वामी उन्होंने हरिभक्ति विलास में लिखा है कि भगवान के अत्यंत प्रिय हैं शंकर और उनकी कृपा से वो भी गोपियों में भी बहुत सी गोपियों ने साधन सीखा, गोपियों ने रात में प्रवेश किया और गोपी स्वरूप में वृंदावन गोपी स्वर पटविराज जुगान विपद में प्रेम प्रयत्न आकृति कर ये मंत्र है हमारे संस्कृति के उपासना और उन्होंने व्रत लिखा है सनातन गोस्वामी जो नहीं करना चाहते हैं वो न करे। सनातन गोस्वामी जहाँ भी रहते थे वृंदावन में गोपेश्वर और बनखंडी महादेव के पास गोवर्धन में रहते थे तो चक्रेश्वर कामकमन में रहते थे तो
कामेश्वर
महादेव
नंदगांव में नंदीश्वर नंदीश्वर महादेव तो वो उपवास करते थे और उन्होंने गीत लिखा है तो जो न करना चाहे वो न करें किंतु मैं तो करता हूँ शंकर जी का दर्शन भी कर देता हूँ किंतु गोपेश्वर महादेव के रूप और उनसे प्रार्थना करता हूँ उनको वही दीजिए जो उनके स्रोत में रह इसलिए आप लोग स्वतंत्र हैं वैष्णव लोग हैं कोई बात हम लोग नहीं है जैसे आप लोग करें मैंने अपनी बात कर आप लोगों में